अदिति दोपहर में ही मायके पहुंच गई थी। घर की दहरी लांघते ही उसे वही पुरानी गंध महसूस हुई, दवाइयों की, उबले पानी की और माँ के कमरे में जलती अगरबत्ती की। माँ बिस्तर पर लेटी थीं, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे हल्की सी सूजन। अदिति ने चुपचाप उनके पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया। अब तबीयत कैसी है माँ? उसके आवाज़ में चिंता साफ छलक रही थी। ठीक हूँ बेटा, माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस थोड़ा सा बुखार था। अदिति ने उनका माथा छूकर देखा, फिर दवाई का वक्त याद दिलाया। पानी का ग्लास थमाते हुए वो माँ को ऐसे देख रही थी जैसे हर सांस गिन रही हो। बीच बीच में वो दरवाजे की तरफ भी देख लेती अनजाने में। पिता का नाम मन में आते ही उसने मोबाइल उठाया, एक बार, फिर दूसरी बार। कॉल गई पर कट गई। उसने फिर ट्राई किया, इस बार भी वही। अदिति की भौहें सिकुड़ गईं। पापा फ़ोन क्यों काट रहे हैं? उसने बुदबुदाया। आखिरकार वो माँ की तरफ मुड़ी। माँ, उसने धीमे पर भारी स्वर में कहा, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना काम है, पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में भी वो कैसे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही माँ ने उसका हाथ थपथपा दिया। कोई बात नहीं बेटा, माँ ने नरमी से कहा, काम होगा, आ जाएंगे, तू ज़्यादा मत सोच। माँ की आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस आदत थी सब सह लेने की। अदिति की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, वो बोली, मैं चलती हूँ, वहाँ ससुराल में सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। माँ ने सिर हिलाया, हाँ बेटा जा, घर भी तेरा है, वहाँ भी। अदिति उठी, माँ की चादर ठीक की, दरवाजे तक आते आते फिर रुकी। कोई बात हो तो फ़ोन कर देना, उसने कहा, मैं तुरंत आ जाऊँगी। माँ ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। अदिति ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर विश्वनाथ ने टैक्सी से उतरते ही एयरपोर्ट की तेज़ रोशनी में कदम रखा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, मगर एयरपोर्ट के भीतर दिन जैसा उजाला था। कांच की दीवारों से टकराती लाइट, लोगों की भागती हुई परछाइयाँ, अनाउंसमेंट की गूंज और ट्रॉलियों की लगातार खड़खड़ाहट, सब कुछ मिलकर एक अजीब सी तेज दुनिया रच रहा था। फिर भी इस भीड़ और शोर के बीच उसका मन बिल्कुल अलग ही जगह अटका हुआ था। मोबाइल उसकी पैंट की जेब में रखा था। उंगलियां बार बार अनजाने में उसी जेब की तरफ चली जाती, जैसे अभी अभी कटी कॉल को दोबारा छू लेने से वो पल लौट आएगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो बातचीत उसके भीतर इतनी गहराई से उतर गई थी। सिक्योरिटी चेक की लाइन में खड़े होकर भी उसके होठों पर हल्की सी रेखा बनी रही। सामने खड़े लोगों की बातें, किसी बच्चे का रोना, किसी का झुंझलाना, कुछ भी उसे पूरी तरह छू नहीं पा रहा था। दिमाग में बार बार शामली की आवाज़ गूंज रही थी, उसका सवाल, उसका ठहराव और फिर वो अजीब सी दूरी, जो शब्दों में नहीं एहसास में थी। अजीब है, उसने मन ही मन सोचा, इतनी छोटी सी बात और मन इतना हल्का। उसे याद आया, फ़ोन उठाते ही दिल में जो सुकून फैला था वो कितनी देर बाद महसूस हुआ था। न कोई बड़ी बात, न कोई वादा, न कोई शिकवा, बस एक साधारण सी बातचीत। फिर भी उसी में कुछ ऐसा था जिसने उसे भीतर तक छू लिया। दो दिन, ये ख्याल आते ही उसके माथे पर हल्की सी सिलवट आ गई। पहले कभी दो दिन यूं नहीं लगे थे। काम, मीटिंग, सफ़र, सब अपनी जगह ठीक रहते थे, मगर आज जाने क्यों ये दो दिन उसे अचानक लंबे लगने लगे थे, जैसे समय खुद धीमा चलने वाला हो। लाउंज में बैठते हुए उसने कांच की दीवार के बाहर झांका। रनवे पर खड़ा विमान सफ़ेद रोशनी में नहाया हुआ था। उसके पंखों पर पड़ती लाइट उसे किसी और ही दुनिया की तरफ बुलाती लग रही थी। पता नहीं वो क्या कर रही होगी अभी। ये ख्याल आते ही उसके होठों पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल बेवजह। फ्लाइट की घोषणा हुई। विश्वनाथ ने अपनी सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट बांधी और आंखें मूंद ली। इंजन की आवाज़ तेज होती चली गई। बस दो दिन, उसने खुद से कहा, काम निपटेगा और फिर घर। विमान ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, फिर जमीन से ऊपर उठ गया। जैसे ही शहर की रोशनियां नीचे छूटने लगी, वैसे ही उसका मन भी शामली की तरफ और ज्यादा खिंच गया। उधर घर की रसोई में शामली गैस के सामने खड़ी थी, कढ़ाई में सब्जी चटक रही थी। तेल में जीरे की आवाज़, हल्दी की खुशबू और हरी मिर्च की हल्की सी तीखा सब मिलकर रसोई को गर्म और जीवंत बनाए हुए थे। चारों तरफ नौकर अपने अपने काम में लगे थे। कोई रोटियां बेल रहा था, कोई चावल छान रहा था, कोई दाल का तड़का संभाल रहा था। रसोई में आवाज़ें थीं, हलचल थी, जिंदगी चल रही थी, पर शामली के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वो चम्मच चलाते चलाते एक पल को रुक गई। भाप उठती सब्जी के बीच अचानक विश्वनाथ की आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंज गई, तुम मेरी पत्नी हो। उसके होठों पर अनजाने ही हल्की सी मुस्कान आ गई। ये मुस्कान इतनी सहज थी कि उसने खुद भी उसे आते नहीं देखा। अगले ही पल उसने खुद को संभाला, होठ बींच लिए। बेवकूफ़, उसने मन ही मन खुद से कहा, इतनी सी बात पर। सच ये था कि उसे अच्छा लगा था। बहुत अच्छा। उसे अच्छा लगा था कि उसने फोन किया। उसे अच्छा लगा था कि उसने बिना वजह, बिना जरूरत बस यूं ही बात की। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा था उसका वो सादा सा अधिकार जिसमें जोर नहीं था, बस अपनापन था। इसी के साथ कहीं भीतर एक हल्का सा खालीपन भी उभर आया, ये जानकर कि वो दो दिन घर पर नहीं होगा। ये खालीपन कोई शिकायत नहीं था, बस एक कमी थी जो अचानक महसूस होने लगी थी। खुशी और दुख दोनों एक साथ। उसने आंच धीमी की, सब्जी में नमक डाला और गहरी सांस ली। क्या हो गया है मुझे, उसने खुद से सवाल किया, पर जवाब नहीं मिला। वो सोच में डूबी ही थी कि पीछे से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। मधु थी। ठाकुराइन, मधु ने धीमे से कहा। मौसी जी, आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। श्यामली का हाथ वहीं थम गया, चम्मच कढ़ाई से टकराया और एक हल्की सी खनक रसोई में फैल गई। उसके चेहरे की रंगत एक पल में बदल गई। दिल जोर से धड़क उठा, जैसे किसी ने अचानक भीतर से झक छोड़ दिया हो। अभी? ये सवाल उसके मुंह से अनायास निकल गया। हाँ, मधु ने सिर हिलाया, अभी बुलाया है। श्यामली ने गैस बंद की। रसोई की गर्मी अचानक उसे ज्यादा लगने लगी, जैसे हवा भारी हो गई हो। उसकी आंखों के सामने सुषमा देवी का चेहरा उभर आया, उनकी ठहरी हुई नजरें, वो अधूरी मुस्कान और वो एहसास जैसे वे कुछ जानती हों, कुछ पहचानती हों। ठीक है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन जब उसने कदम बढ़ाए तो उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट थी, ऐसी घबराहट जो बिना वजह नहीं होती, जैसे कोई अनदेखा सवाल उसका इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई बीती हुई बात जो याद नहीं आती मगर महसूस होती है। और इसी पल रसोई के शोर और एयरपोर्ट की चकाचौंध से दूर दो अलग अलग जगहों पर मौजूद दो दिल एक ही एहसास में बंधे हुए थे, बिना कहे, बिना माने।